सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 66, आयत नंबर 66। यहां से जो मजमून शुरू हो रहा है इसको समझने के लिए जरूरी है कि पीछे जो आपने पढ़ा है उसको आप एक दफा जो है वो सोचें और उसको अपने सामने लाएं। आपने पिछली आयत में पढ़ा कि शैतान जो है वो इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, औलादे आदम जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है, और रोजे अव्वल से शुरू से ही। तो शैतान क्या करना चाहता है कि वो इंसानों को आरजुओं में, तमन्नाओं में, झूठे वादों के दाम में फांस कर जो है वो सिराते मुस्तकीम से हटा दे। अब एक तरफ शैतान को अपनी दुश्मनी याद है, शैतान को चैलेंज याद है कि मुझे हटाना है, और दूसरी तरफ हजरत इंसान है। और आप देखें कि इंसान जो है वो क्या करता है कि वो शैतान की चालें, उसके हरबे, उसके ट्रिक्स और उसके जो फरेब हैं उसमें आ जाता है, और फिर क्या करता है कि वो शिर्क करने लगता है, वो जो है वो झूठ बोलने लगता है, वो जिना करता है, वो बेहयाई में मुलव्वस हो जाता है, वो अपने वक्त को जाया करता है, और वो भूल जाता है कि मुझे दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों भेजा था और मुझे क्या काम करना था। अब यहां पर ये आयत नंबर 66 में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना तारुफ करवा रहे हैं, और ये तारुफ जो है ये बड़े खूबसूरत अंदाज में करवाया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इंसान, क्या तू मेरी नेमतों की कदर करता है? क्या तू सोचता है कि मैंने तुझे किन किन नेमतों से नवाजा? और जिन भी नेमतों से नवाजा, ये नेमते जो हैं क्या ये मेरी कुदरत के करश में हैं, या देवताओं या देवों दे, देव वो देवता देव देवियां या देवता जिनकी वो पूजा करते थे, या जो उनके झूठे माबूद थे उस वक्त मक्का वालों के भी, तो क्या ये उनकी जो वो मतलब उनका ये फजलो करम है, या फिर ये कि मेरा फजलो करम है? तुम्हें मेरा सहारा जो है वो थामना चाहिए जब तुम मुश्किल में फंस जाओ, जब तुम्हें कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तुम्हें मेरी तरफ रुजू करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, या ये कि अपने देवता या अपनी देवियां उनको जो है वो पुकारना चाहिए? तो होता क्या है कि अमली जिंदगी में जब तुम पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो सबको भूल कर फिर तुम मुझे याद करने लगते हो, फिर मुझे पुकारने लगते हो। तो आम जिंदगी में भी फिर तुम क्यों नहीं मेरे सहारे को थाम लेते, तुम क्यों नहीं मेरे हो जाते, तुम क्यों नहीं मेरी बंदगी करते, तुम मुझे कैसे भूल जाते हो? रब्बुकुमुल्लज़ी युज़ज़ीलकुमुल फुल्का फिल बहर। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, किसी और का नहीं, तुम्हारा रब, अल्लज़ी वो ज़ात। जैसे माँ बाप बच्चे को याद दिलाते हैं ना कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए ये कुर्बानी की, और फिर तुम भूल गए। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, बड़ा ही झंझोड़ने वाला अंदाज है। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, अल्लाजी वो जात है, युज़ी ज़ा जीम वो, इसके मानी है धीरे धीरे चलाना, नरमी से चलाना। तो युज़ी जो चलाता है, जो चलाता है, लकुमुल फुल्का, तुम्हारे लिए कश्तियां। अब देखें, वैसे तो अल फुल्क लिखा हुआ है, फुल्क इस्म जिन्स है, वाह जमा मुजक्कर मोनस ये इस्तेमाल होता है, जो तुम्हारे लिए कश्तियों को चलाता है, फिर बारे समंदर में, ले तब तगू मिन फजल ही, ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। तो यहां पर फजल तलाश करने से क्या मुराद है कि तुम जो है समंदरों में अपनी कश्तियां और जहाज चलाकर जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो, कारोबार करते हो, तो कश्ती को तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया है और समंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए ताबे कर दिए हैं। अब आप देखेंगे ठाटे मारता हुआ समंदर जब भिपरता है, जब सैलाब बन जाता है, तो फिर क्या होता है कि हर तरफ तबाही के आसार जो है वो नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कहते हैं कि ये मैं हूं तुम्हारा रब, तुम्हारे जो है वो झूठे खुदा नहीं है, तुम्हारे देवता नहीं है जिन्होंने समंदर को ताबे किया हो या कश्तियों को मुसख्खर कर दिया हो, ये मैंने किया है। तो और इसलिए किया है ताकि तुम रब का फजल तलाश कर सको, और फजल तलाश करने से मुराद है कि मुआशी, तमदनी, इल्मी और जहनी जितने फवायद हैं गहरी सफर के जरिए से तुम उससे मुस्तफीद हो सको। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर निहायत मेहरबान है। यहां पर खूबसूरत अंदाज है कि अल्लाह जो है उसने तुम्हें ये कुदरत दी है कि हजारों टन का वजनी जहाज समंदर के सीने पर चलता है, जैसे एक रोड पर एक खुश्क जो सड़क होती है उस पर ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर चलते हैं ना, तो आप देखें कि पानी के ऊपर, पानी लिक्विड है और वो जो समंदरी जहाज है वो कई टन का है लेकिन वो पानी के ऊपर जो है वो चलता है। ये किसने किया, ये किसका करिश्मा है, ये किसका मौजा है, ये तुम्हारे रब ने इंतजाम किया है। और क्यों किया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, और जब रब का फजल तलाश कर लो तो होना क्या चाहिए था, तुम्हें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए था, तुम्हें अल्लाह के फजल और रहमत पर अल्लाह के आगे झुकना चाहिए था, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए थी। क्यों, इन्नहु काना बिकुम रहीमा, इन्नहु काना बिकुम रहीमा, इसलिए कि तुम्हारा रब जो है वो तुम पर बड़ा मेहरबान है, बड़ी नेमतों से नवाजने वाला है। तो कश्ती और दरिया की मिसाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को एक और दुनिया की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे समंदर में जब कश्ती या बहरी जहाज खामोशी से चलता है, आराम से चलता है, तो इंसान अल्लाह को भूला रहता है, तो दुनिया की जिंदगी में भी जिंदगी की कश्ती जो है जब आराम से चल रही होती है इंसान अल्लाह को भूला रहता है। उधर बीमार हुआ, उधर कोई एक्सीडेंट हुआ, उधर कोई जॉब छूट गई, उधर कोई मुसीबत से दो चार हुआ, तो इंसान जो है मुसीबत पड़ते ही अल्लाह अल्लाह करने लगता है। उधर बकरा ज़िबा कर दो, सदका दे दो, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान खोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हम पर ये मुसीबत आ गई। कहा एग्जैक्ट वाइदा मस्सा को वो दुरु, कि जब तुम पर जो है वो दुर आ जाता है, बाद रा रा, और दुर जो है इसके मानी तकलीफ के हैं, जरर मुसीबत परेशानी, कि जब तुम मुसीबत में परेशानी में घिर जाते हो वो तुम पर आ जाती है फिर बाहरी समंदर में। तो जब तुम पर समंदर में मुसीबत आ जाती है दल्ला भूल जाते हो, दल्ला जो है इसके दो मानी होते हैं, द्वाद लाम लाम, आप पीछे द्वालीन भी पढ़ चुके हैं, एक होता है गुमराह हो जाना, दूसरा होता है गाफिल होना, भूल जाना। तो तुम क्या करते हो, तुम भूल जाते हो, मन तदउन इल्ला इया, जिनको तुम पुकारते थे, तो एक अल्लाह के सिवा, इल्ला इयाहू मगर उसी को, तो एक अल्लाह के सिवा जिन जिन माबूदों को, जिन जिन देवताओं को, जिन जिन खुदाओं को तुम एक अल्लाह के सिवा जो है वो पुकारते थे, तो जो ही तुम्हारा जहाज या कश्ती गर्दिश में आती है, लहरी लहरें जो हैं और समंदर की मौजें जो हैं उसके थपेड़े कश्ती को पड़ते हैं, तो उस वक्त सारे देवी और देवता जो है उनको तुम भूल जाते हो। तो तुम क्या करते हो, जो भी नेमते हैं तुम उनको ये समझते हो कि ये मुझ पर नेमतों की जो बारिश है, ये जो फजल है, ये हमारे देवियों ने किया है, देवताओं ने किया है, हमारे माबूदों ने किया है, तुम भूल जाते हो कि अल्लाह ने किया। तो अच्छे दिनों में अल्लाह को भूल जाते हो और शिर्क करते रहते हो, उनके आगे झुकते रहते हो, जो ही मुसीबत परेशानी आती है तो तुम जो है उनको भूल जाते हो, फिर तुम्हें असल हकीकत खुलती है, फिर तुम क्या करते हो, तुम अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करते हो। उस वक्त तुम जो है वो सारा शिर्क करना छोड़ देते हो, दल्ला मन तदउन इल्ला इयाहू, तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्री, फिर जब वो तुम्हें बचाकर खुश्की पर पहुंचा देता है, नून जीम वाओ, और इसके मानी है नून जीम वाओ के निजात देना, बचाना, तो जब वो तुम्हें निजात देता है इलल बर्री खुश्की की तरफ, यानी समंदर की जो तूफानी लहरें थी और वहां पे जो तूफान था और जो गर्दाब था, तो उसके अंदर वो तुम्हें डुबो सकता था, لیکن اللہ کیا کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے. پھر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اردتم. عین را دعات جو ہے اس کے لفظی معنی تو چوڑائی کے ہیں, چوڑائی طول اور عرض. آپ اردو میں بھی بولتی ہیں کہ کپڑے کا طول کتنا ہے, عرض کتنا ہے, تو چوڑائی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پہلو تہی کرنا, اپنا رخ موڑ لینا, منہ پھیر لینا, کنارہ کر لینا, اعراض کرنا. اردو میں بھی آپ کہتی ہیں اس نے اعراض برت لیا. اب تمہارا حال کیا ہوتا ہے کہ جو ہی اچھے دن آ گئے تو تم نے جو ہی خشکی پر قدم رکھا تو اب تمہیں نہ وہ مصیبت کی گھڑی یاد رہی اور نہ ہی تمہیں اللہ سے رونا اور گڑگڑانا یاد رہا. اب تم بھول گئے, اردتم, پھر تم نے اس سے کنارہ کشی کر لی, تم نے اسے منہ موڑ لیا, تم نے اللہ سے اعراض کر لیا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مصیبت میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو. اور مشرکین مکہ کی یہ عادت بھی تھی کہ جب کشتی گرداب میں پھنستی, سمندر کے طوفانی تھپیڑے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لیتے اور ان کو اپنے ظاہری اسباب سب ختم ہوتے ہوئے نظر آتے تو اس وقت وہ ایک اللہ کو پکارتے, اور جو ہی جو ہے وہ سمندر سے کشتی نکل کر باہر آ جاتی تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرتے, یہ پھر اپنے جو دیوی اور دیوتا تھے جو ان کے معبود تھے ان کو پکارنے لگتے. جیسے آج کے دور میں بھی آج کا مشرک جو ہے, آج کا مسلمان لیکن شرک کرنے والا, وہ کیا کرتا ہے, وہ مشکل وقت میں جو ہے اللہ کو پکارتا ہے. اور عام طور پر کیا کہتا ہے, جیسے ایک کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں بہاو الحق بیڑا بننے دھک, اے بہاو الحق یہ کشتی پار لگا دے, یا علی مشکل کشا, یا جو ہے وہ داتا گنج بخش, تو پیر بخش, ہے نا. تو آج کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلات سے ہمیں جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وکان الانسان کفورا, حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کفورا یہ بڑا سخت لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور کفورا جو ہے اس کے معنی کیا ہے, ناشکرا, کفر کرنے والا, بڑا ہی ناشکرا. تو انسان جو ہے یہ عجیب ہے کہ شرک کو چھوڑتا نہیں ہے اور اللہ جو ہے اس کو بھولا رہتا ہے, حالانکہ اللہ جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے کہ مشکل میں تم شرک کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, لیکن مشکلوں سے پھر بھی اللہ تمہیں نکالتا ہے. تو تم اللہ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے, تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ توحید کی دعوت دے رہی ہیں. اور شیطانی اغوا جو ہے نا اسے بچنے کے لیے جو ہے وہ جگا رہی ہیں, غفلت کی نیند سے بیدار کر رہی ہیں کہ اٹھو, جاگو, بیدار ہو جاؤ اور شرک کرنے والوں شرک کرنا جو ہے وہ چھوڑ دو. پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر جو 68 ہے, 68 ہے, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی گرفت کا معاملہ صرف سمندر سے متعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف سمندر میں ہی پکڑتا ہے, اللہ خشکی پر بھی پکڑ سکتا ہے اور پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ کیسے تمہیں پکڑے گا. تو یہاں پر مثالیں دی ہیں, افا امن تم یخصف بکم جانب البری, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو, افا امن تم, کیا تم امن میں آگے ہو, یخصف کہ اگر وہ دھنسا دے. یہاں پہ خا سین فا کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ دھنسا دے, اور خا سین فا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ دھنس جانا, خسوف القمر, نماز پڑھتے ہیں نا, تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو خسفا جو ہے اس کے معنی ہے کسی کو زمین میں دھنسا دینا, پتھروں کی بارش کسی پر ہو, جیسے کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی چیز آ گئی اور وہ زمین کے اندر ہی جو ہے وہ چلا گیا. تو اگر اللہ چاہے تو تمہیں جو ہے وہ دھنسا دے, بکم تم کو جانب البری خشکی کی طرف, کہ تم کو خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے, اور یورسلا علیکم या वो भेज दे तुम पर रसल रा सीन लाम। रसल जैसे इसके लफ्जी माने क्या होते हैं कि नरमी से चलना, आराम से चलना, और रसूल भी क्या करते हैं कि आराम से अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचाते रहते हैं। या वो तुम पर भेज दे अलैकुम तुम पर हासिबन, हा स्वाद वा, इसके मानी है किंकर उड़ाने वाली आंधी, पत्थर उड़ाने वाली आंधी। तो अगर अल्लाह चाहे तो तुम पर जो है वो पत्थर बरसा देने वाली जो है वो तुंदे बाद जो है वो भेज दे, तुंद बाद या बादे तुंद जो है वो तुम पर भेज दे। सुम्मला तजदु लकुम वकीला, और फिर तुम इससे बचने वाला कोई हमायती ना पाओ। वजदा यजदु पाना, तो जब वो पत्थरों की बारिश होने लगे तो उस वक्त जो है तुम किसी को भी मदद के लिए नहीं पाओगे। वकील कौन होता है कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी होती है तो लोग वकील कर लेते हैं और कहते हैं कि सारा केस वकील के सुपुर्द कर दिया है, बड़ा ऊंचे दर्जे का वकील किया है, उसकी बड़ी फीस है और वो बड़े जबरदस्त मुकदमे लड़ता है, और फिर उसके ने तो फलां फलां केस जो है ना वो जीता हुआ है। तो वकील जो है इसके माने क्या है कि वकील के किसी पर एतमाद करना, किसी की रहनुमाई पर भरोसा करना, किसी के सहारे को थाम लेना और उससे जो है वो मदद चाहना। तो कहा लेकिन जब अल्लाह जो है वो तुम्हें पकड़ेगा और अल्लाह जो है वो तुम्हें जमीन में धंसाएगा, तुम पर पत्थरों की बारिश करेगा, यानी वो या तो जमीन में तुमको धंसा कर गर्क कर सकता है या तुम पर कोई ऐसी सख्त हवा भेज दे जो पत्थर किंकर बरसाने लगे। तो कौमे आद ऐसी ही हवा के तूफान से हिला की गई थी ना, और वैसे पत्थरों की बारिश किस पर हुई थी? लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी हुई थी। तो किसने बचाया? कोई मदद को ना आया। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 69 है 69, अम अमीन तुम, अब ये सरकेश और शिर्क करने वाले, कुफर करने वाले, नशुकरी करने वाले, अब दूसरा सवाल है अम अमीन तुम, या तुम जो है वो अमन में आ गए हो, क्या तुम जो है इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हो, युईदकुम फीही तारतन उखरा, कि अल्लाह फिर किसी वक्त तुम्हें जो है वो समंदर में ले जाए। युईद अदा करना ऐन मौदाल, यानी किसी चीज को फिर से जो है वो रिपीट कर देना कि वो तुम्हें फिर से ले जाए। ही कि यहाँ पे जमीर समंदर के लिए आई है कि तुमको समंदर में ले जाए। तारतन उखरा, तारतन जो है ता वोरा इसका रूट है और ये बार के लिए इस्तेमाल होता है, दफा के लिए ये इस्तेमाल होता है कि वो उखरा जो है दूसरी के लिए आता है कि वो तुम्हें दूसरी बार जो है वो समंदर में ले जाए, दूसरी मर्तबा समंदर में ले जाए, क्योंकि तारतन जो है मर्तबा दफा बारी बारी के लिए इस्तेमाल होता है। युर्सिला अलैकुम, फिर वो भेजे चलाए तुम पर कासिफम मिनर रेही, कासिफ काफ स्वाद फा, ये सख्त तूफान को कहते हैं, तेज और सख्त हवा जो दरख्तों और हवाओं को, जो दरख्तों को और इमारतों को तोड़ती चली जाए, ऐसी तुंदो तेज आंधी जो दरख्तों को भी तोड़ देने वाली हो, तोड़ फोड़ करने वाली। और आम हवा होती है ना तो जैसे पत्ते उड़ते हैं, लेकिन जो बहुत तेज आंधी होती है उससे दरख्त भी जड़ों समेत उखड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर इस तरह कासिफन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और ये भी आंधी का तूफान है, तुंदो तेज आंधी है जो तबाही मचाने वाली है। मिनर रही हवा में से, यानी हवाई की एक किस्म है, सख्त तूफानी हवा अल्लाह तुम पर भेज दे, फयुग्रिककुम बिमा कफरतुम, और तुमको जो है फिर क्या करे, फयुग्रिककुम गैन राकाफ, इसके मानिए फिर गरक कर दे तुम्हें, बिमा कफरतुम नशुकरी के बदले में। यहाँ पे जो है वो बी जो आया है ये बदले के लिए आया है, तो पीछे क्या कहा था, फकानल इंसानु कफूरा, और अब यहाँ पे क्या कहा कि इस कुफर के बदले में फिर अल्लाह तुम्हें जो है वो गर्क कर दे। तुम्मला तजदु लकुम अलैना बिही तबीआ, ता बा ऐन जो है इसका रूट है, और जैसे होता है ना काबे, इत्तबा, उसी से तबीयन है, इसके मानी है पीछा करने वाला। और तबी का लफ्ज जो है वो नासिर और मददगार के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो किसी की मदद करता है वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है, पीछा करता है कि कब इसको कहां पे जो है वो मदद की जरूरत है। तो जब अल्लाह तुम्हें जो है वो गर्क कर दे, डबो दे, खत्म कर दे, सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबिया, और तुमको कोई ऐसा ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछगिछ कर सके। अब आप देखें कि कोई तुम्हें फिर जो है तुम्हारा फॉलो अप नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, फिर तुम किसी को भी नहीं पाओगे अपनी तरफ से हम पर कि हमारी वो आके बात पूछ कर ले, हमसे वो पूछ ले। ला तजेदु लकुम अलैना, तुम अपने लिए किसी को भी ऐसा नहीं पाओगे हम पर यही इससे तबीया कि वो पीछा करे, पूछगिछ करे, गिरफ्त करे। तो उस वक्त जो है कोई ऐसा नहीं है जो आकर जो है वो हमसे पूछे कि किस वजह से इनको जो है वो गर्क कर दिया या हमसे तुम्हारा बदला ले सके। कोई नहीं है, कोई तुम्हारा परेशान हाल नहीं है। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا। यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि इंसान जो है अशरफल मखलूकात में से है, और अल्लाह ताला ने इंसान को जो है दूसरी मखलूकात पर फजीलत अता की है। अब आप देखिए कि ये जो इंसान को दूसरी मखलूकात पर फजीलत है, आप देखें कि किस वजह से है, क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को ये फजीलत का शर्फ और फजल जो है वो अता किया है। और ये फजल हर इंसान को है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। दूसरी जितनी मखलूकात हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने इंसान को सब पर जो है वो फजीलत अता की है। दूसरी किसी मखलूक को ये फजीलत अता नहीं की। कहा वलकत करमना, और तहकीक हमने जो है वो इज्जत बख्शी। करम किसे कहते हैं, वैसे अंगूर की बेल को कहते हैं, और ये बात याद कर लें, अंगूर की बेल को कहते हैं। और अंगूर की बेल जो थी अरबों के यहां कसीरुल मुनाफे और कसीरुल फवायद समझी जाती थी, बहुत नफे का उसको जरिया समझते थे। अंगूर से भी बहुत सी चीजें बनाते थे, और बेलों से वो उसको बाड़ का काम भी लेते थे, अपने बागों के इर्द गिर्द वो महफूज करने के लिए अपने बागों को इर्द गिर्द वो अंगूर की बेल जो थे वो चढ़ा देते थे। तो ये घूम घूम कर राउंड शेप में आगे पीछे ये फैलती है, और जैसे फिर क्या करती है, घिराव कर लेती है ना। तो इसी से ये लफ्ज जो है ये सखी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इज्जत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर जो है फरमाया वलकत करमना, और तहकीक हमने इज्जत बख्शी। अब इंसान को उसकी जिम्मेदारी जो है वो याद दिलाई जा रही है कि इंसान हमने जो है वो इज्जत बख्शी। किसको बख्शी? बनी आदमा, बनी आदम को। तो हमने दूसरी तमाम चीजों से बढ़कर तुम्हें जो है वो फजीलत अता की, जैसे पौधे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, पत्थर हैं, जमादात हैं, नबातात हैं। जरा उनका अपने से इंसान तू मुआवजा तो कर। कभी तूने गौर किया कि तुम्हारी शक्लो सूरत और उनकी शक्लो सूरत, तुम्हारा कदो कामत और उनका, तुम्हारी हैयत और उनकी। कैसे जानवर जो है वो हाथ और पांव पर चलते हैं, इंसान जो है वो कैसे शरफ के साथ, इज्जत के साथ जो है वो पांव पर खड़ा हो जाता है और चलता है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अकल से नवाजा है, फिर इंसान क्या करता है, इस अकल के जरिए अपनी आराम और राहत के लिए बेशुमार चीजें इंसान ने पैदा की हैं। जानवर जो है, परिंदे, जानवर, ये सब अकल से महरूम है। वो ऐसी कोई इजाद अपने लिए नहीं कर सकते जो जैसे कि इंसान अपने लिए जो है वो कर लेता है। अक्लो शऊर से फायदा उठाते हुए इंसान अपने लिए खूबसूरत इमारतें तामीर करता है, लिबास बनाता है, और गर्मी से भी अपने आप को किस तरह बचाता है, सर्दी से इंसान अपने आप को किस तरह से बचाता है। तो मौसम की शिद्दत से बचने के लिए भी आप देखें कि और कुछ नहीं, आज आजकल के मौसम में आप देखें कि आपके पास जैकटें कितनी हैं। आप हीट के सिस्टम को देखें, उन इलाकों में जहां सर्दी तो है लेकिन हीट का ये सिस्टम नहीं है कि पूरा घर जो है वो गर्म हो, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि कम रजाई के अंदर, कंबल के अंदर घुसते हैं, कोई हीटर है, कोई कोयलों की अंगीठी है, डिफरेंट तरीके से इंसान जो है वो गर्मी हासिल करता है। लेकिन बाज जगहों पे जहां बहुत तरक्की है, कितना खूबसूरत निजाम है, एक आम एसी होता है, एक सेंट्रल एसी होता है, एक वैसे हीट होती है, एक सेंट्रल हीट होती है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये कैसे इंसान करता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने बनी आदम को जो है वो फजीलत बख्शी, इसको जो है वो अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया और इंसान को आसन तकवीन पर पैदा किया। और कैसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इन्हीं सब चीजों पर फजीलत नहीं दी बल्कि फरिश्तों पर भी फजीलत अता की। क्यों? अल्लाह ने फरिश्तों से आदम को सजदा करवाया और तमाम मखलूक पर यह वाजे कर दिया कि इंसान ही अशरफुल मखलूकात है। अब आप देखें कि इंसान का बच्चा जो दूसरे तमाम जानवरों के बच्चों से कमजोर पैदा होता है, और इंसान के बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल है, और अगर अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में मोहब्बत ना डाले तो बच्चा तो बिलक बिलक कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर हजरत इंसान वहीं पे मर जाए। और जानवर का बच्चा जंगल में पल कर जवान हो जाता है, गाय का बच्चा पैदा होता है थोड़ी देर बाद ही उठकर खड़ा होता है और दूध पीने लगता है, घंटे बाद ही, घंटे से भी कम वक्त में उठकर खड़ा होकर तो खुद ही दूध पीने लगता है। कौन उसको कहता है? कोई भी नहीं कहता। तो यहां पे ये बात जो है ये बताई जा रही है कि कायनात की तमाम चीजें अल्लाह ने इंसान की खिदमत पर लगा रखी हैं, हत्ता के सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, पानी और कायनात का जर्रा जर्रा। तो ये है अल्लाह की का इज्जत देना। वलकद करमना बनी आदमा वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी, और फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो है खुश्की में और समंदर में जो है वो सवारियां अता की, वहमलनाकुम और तुम्हें सवार करवाया, और इनको सवारी दी हमने फिल बर्री खुश्की में, जंगल में, वल बहरी और दरिया में, समंदर में। अब यहां पर जो है खुश्की और तरी जो है यहां पर सवारियों का जिक्र है। ये दरअसल अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह की अता करदा नेमतों पर गौर व फिक्र करे और नेमतें पाकर अकड़ने की बजाय नेमतों की शुक्र गुजारी करे, अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा बने। क्योंकि नेमतें पाकर अकड़ना इबलीस की आदत है, और नेमतें पाकर शुक्र गुजारी का रवैया इख्तियार करना ये पैगम्बरों का जो है वो उसवा है। वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबाति, और हमने तुम्हें जो है वो पाकीजा चीजों से रिज्क अता किया। अब आप देखें कि इंसान की खुराक के लिए गल्लाजात हैं, मेवे हैं, फ्रूट हैं, लज्जतें हैं, जायके हैं, तरह तरह की चीजें हैं। आप दूर ना जाएं, आप सैलेड को देखें, तरह तरह की सलाद है जो आप तैयार करते हैं और खाते हैं, है ना। आप चावल को ले लें, एक चावल है और उससे आप क्या क्या बनाते हैं, किसी को बिरयानी कहते हैं, किसी को पुलाव कहते हैं, किसी को मतंजन कहते हैं, किसी को जरदा कहते हैं, किसी को सब्जी का पुलाव कहते हैं, डिफरेंट तरीके से आप एक चावल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, नमकीन भी करते हैं, मीठा भी करते हैं, फिर नहीं है तो खीर है, तो कस्टर्ड है, तो फ्ला है। तो यानी आप एक एक चीज पर गौर करें कि ये अल्लाह है जिसने तुमको जो है वो पाकीजा चीजों से रिस्क अता किया। तो ये सारी नेमतें जो है ये किसकी अता करता है? ये अल्लाह की अता करता है। और पाकीजा चीजें पाक भी हैं, हलाल भी हैं। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ قَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ, اور فضیلت دی ان کو, عَلَىٰ قَسِيرٍ, بہت سو پر, بہت سی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا کی, ممن, ان میں سے, خلقنا, جنہیں ہم نے پیدا کیا, تفضیلہ, بزرگی دینا, فضیلت دینا. ایک بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ جب ورب آتا ہے نا, جو ورب, उसके बाद फिर दोबारा आखिर में उसी जुमले के आखिर में, उसी आयत के आखिर में वर्ब से मिलता जुलता लफ्ज आए, उसके रूट से उसकी फैमिली का लफ्ज आए, तो वो उसकी ताकीद के लिए आता है, उसकी अहमियत बताने के लिए आता है। आप देखें वफद्दलनाहुम तफदीला, ऐसे ही जैसे आप किसी से कहती हैं कि इन छुट्टियों में मैं सोई, खूब सोई, जैसे आप किसी से कहें कि मैं घूमी और फिर खूब घूमी, है ना, तो आपने जैसे उस चीज का इस्तेमाल किया है उसको आप बताने के लिए आप उसको रिपीट करके, मैंने मारा तो खूब मारा, मैं रोई तो फिर खूब रोई। तो अब एक ही बात है ना, रोई कह लिया था, क्या जरूरत है कहने की कि बहुत रोई फिर रोई। तो ये किस लिए आता है? ताकीद के लिए आता है। अब यहां पर भी क्या है, वफदलना हूं अला कसीरम कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला, और अपनी बहुत सी मखलूकात पर इन्हें नुमाया फजीलत अता की। तो इंसान की जो दूसरी मखलूकात पर फजीलत है, बरतरी है, उसको यहां पर जो है वो जाहिर किया जा रहा है, इसको यहां पर नुमाया करके पेश किया जा रहा है। और ये खुली हकीकत है कि इंसान जो है वो जमीन पर जो है वो इक्तदार रखता है, और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात जो है वो सजाई है, और किसी और ने नहीं, किसी फरिश्ते ने नहीं, किसी जिन ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं। तो ये सारा तारुफ देने के बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब बख्शिश मेरी, करम मेरा, फजीलत मेरी, अता मेरी, तो ए इंसान फिर तुम अल्लाह के बजाय किसी मखलूक के आगे क्यों झुकते हो? तो आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक कुल बात का निचोड़ क्या है कि मुश्किल हो या आसानी हो, समंदर के तूफान हो या वैसे कोई मुसीबत का वक्त तुम पर आ जाए, तो इन तमाम मौके पर जब मदद मैं करता हूं, सहारा मैं बनता हूं, मेरी रहनुमाई में तुम उस मुश्किल से निकलते हो, तो फिर तुम जो है तुम्हें मेरे ही आगे झुकना चाहिए और मेरी बंदगी जो है वो करनी चाहिए। तो ये शिर्क करना और ये शैतान की चालों में आना, ए इंसान तो उसको छोड़ दे। तुझे मैंने सबसे खूबसूरत जिस्म, ताकत, जहन, अकल, शऊर, समझ, सारी नियमतों से बनाकर सारी कायनात तेरे लिए जो है जब सजा दी, तो फिर मेरा बंदा तो क्यों नहीं बनता। कुरान का ये अंदाज बड़ा ही खूबसूरत है। अब आप देखेंगे रब्बुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा रब तो वो है, ये सारा तारुफ करने के बाद फिर एक ही बात है कि जब वो तुम्हारा रब है तुम उसके परवरदा बनकर रहो, वो तुम्हारा खालिक है उसकी मखलूक बनकर जियो, वो तुम्हारा हाकिम है तुम उसके महकूम बनकर रहो, वो तुम्हारा माबूद है तुम उसकी भी बंदगी करो। तुम कहां चले जाते हो? तुम्हें क्या हो जाता है? तुम क्यों मुझे भूल जाते हो? तुम क्यों शिर्क करते हो? तुम इधर उधर झूठे सहारे क्यों तलाश करते हो? तुम मेरे हो जाओ, इस दिल में मेरी मोहब्बत जो है वो डालो। मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात लगती है कि जहाज जो है या कश्ती जब तक समंदर के ऊपर चलती है ना, पानी के ऊपर चलती रहती है, जब पानी जो है वो कश्ती या जहाज के अंदर आ जाता है ना तो कश्ती डूब जाती है। तो ये जितनी भी दुनिया की नेमतें और चीजें हैं ना, इनको दिल के अंदर नहीं बिठाना, इर्द गिर्द है ये हमारे, इनसे फायदा हासिल करना है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो रखनी है। और जब इनकी मोहब्बत दिल के अंदर आ जाएगी और दिल के अंदर घर कर जाएगी और दुनिया के हो जाएंगे, तो फिर इंसान जो है वो भी डूब जाता है, फिर वो दुनिया का हो जाता है, फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। अगली जो आयत है इसमें भी आखिरत की याद दहानी दिलाई जा रही है कि जजा और सजा का दिन जो है वो आया ही चाहता है। फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी ग्रोह को इसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। यौमा, जिस दिन, कौन से दिन की बात हो रही है? कयामत के दिन, जबकि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, और उस दिन फिर कयामत का दिन जब आएगा, नदउ हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिन सब लोगों को, किसी एक को नहीं, हम सब के सब लोगों को जो है वो बुलाएंगे। और अलिफ नून सीन, हमजा नून सीन इसका रूट है और इसी से इंसान है, और फिर उनास जो है ये जमा है, तो हम तमाम इंसानों को बुलाएंगे। ये इमाम हैं इनके कायदों के साथ, कायदीन, पेशवा, इमाम, लीडर, तो इनके इमाम और लीडर के साथ जो है हम इनको बुलाएंगे। इससे क्या बात पता चल रही है? इमाम के मानी होते हैं पेशवा, लीडर और कायद के। बात कहते हैं कि इससे मुराद पैगंबर है, कि हर उम्मत को इसके पैगंबर के हवाले से पुकारा जाएगा। दूसरी राय यह है कि इमाम से मुराद आसमानी किताब है जो अंबिया के साथ नाजिल होती है। तो लोगों को इस तरह पुकारा जाएगा, अहले तौरात, अहले इंजील, अहले कुरान, और वो लोग इकट्ठे होकर अल्लाह की पुकार की तरफ आने लगेंगे। तो एक राय ये भी है। तीसरी राय ये है कि ईमान से मुराद नामा अमाल है, कि हर शख्स को जब बुलाया जाएगा तो इसका नामा अमाल इसके साथ होगा और इसके मुताबिक इसका फैसला जो है वो किया जाएगा। तो ईमान के मैंने आपके सामने जो मानी रखे, नंबर एक लीडर कायद, नंबर दो आसमानी किताब, और नंबर तीन जो है ये नामा अमाल है। तो अब आप देख लें कि यहां पर कहा जा रहा है कि इंसान को जो है इसके साथ बुलाया जाएगा, ऐलान होगा और लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, उस वक्त जिन लोगों का नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। या मीमून, यमुना, यमीन दाएं के लिए आता है। तो उस वक्त जिन लोगों का नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, फाउला इकयकराउना किताबहुम, और वो अपना अमाल नामा पढ़ेंगे, वो अपनी किताब जो है वो उसको पढ़ेंगे। वला युजलमूना फतीला, और उन पर जो है जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। फतीला जो है खजूर की गुठली के अंदर बारीक से धागे को कहते हैं। तो असल में खजूर की गुठली जो है उसके अंदर बहुत बारीक सा धागा, इसके मानी क्या है कि बहुत मामूली मिकदार, बहुत थोड़ा सा। तो इंसान के जैसे अमल होंगे उसके मुताबिक ही उसको जो है जजा या सजा जो है वो मिलेगी। और यहां पर कहा जा रहा है कि दाएं हाथ में जिसका नामा अमाल दिया गया, तो दाएं हाथ में नामा अमाल दिए जाने का मतलब क्या है कि वो शख्स जो था वो नेक था, क्योंकि बाएं हाथ में मुजरिमीन का नामा अमाल दिया जाएगा और दाएं हाथ में, दाएं हाथ इज्जत की, बरकत की, नेकी की, सादत की, खुशकिस्मती की अलामत है। दाएं हाथ से खाना और बाएं हाथ से रफाए हाजत को साफ भी करना है ना। तो दाएं हाथ में जिनका नामा अमाल मिलेगा उन पर जर्रा बराबर जुर्म ना होगा। इससे क्या बात पता चलती है कि वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में जो है वो ईमान लाए और अमले सवाले करते रहे, जो शिर्क से बचते रहे, नशुकरी से बचते रहे, और फकान अल इंसानु कफूरा, इससे बचते रहे, तो उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अब आप कहती हैं ये बात कि जो है वो सुस्ती हो जाती है, काहली हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता है, वक्त जाया होता है, दूसरे लोग वक्त जाया कर देते हैं, तो आप कब तक ये बातें कहती रहेंगी? कब तक अपनी बेअमली या बदअमली जो है उसका जो कसूर है या उसका जिम्मेदार आप दूसरों को ठहराती रहेंगी? कब तक? क्या अल्लाह के सामने भी आप ऐसा कहेंगी कि मेरा जो ये 10 दिन थे ये दूसरों ने जाया कर दिए? आप जरूर इस बात का जायजा लें कि सुबह से लेकर शाम तक या रात तक कितना वक्त ऐसा होता है जो मैं अपने नफ्स की वजह से जाया करती हूं, और अपने अमाल की जो जिम्मेदारी है वो दूसरों पर डालना छोड़ दीजिए। कब तक डालेंगे? एक जर्रा बराबर इंसान का अच्छा अमल या बुरा अमल अल्लाह से छुप तो नहीं सकता ना। और इंसान की हालत क्या होती है कि जब अच्छे काम करता है तो उसका क्रेडिट अपने आप को देना चाहता है, जो गलतियां करता है या बुरी बात होती है तो उसका क्रेडिट जो है वो दूसरों को देना चाहता है। तो क्या करे? अपने आप में बहादुर बने, विल पावर पैदा करे, अज़्म पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, और आखिरत जो है ये बगैर हिम्मत के जो है इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। उठें, बेदार हों, गफलत की आंखों को खोलें, अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करें, और याद रखें आप कितने अच्छे अमल करती हैं, आपके घर वाले आपको शाबाश नहीं देते, बच्चे प्यार नहीं करते, वो आके कहते नहीं कि वाह बे वाह मेरी अम्मी भी क्या चीज है, और शोहर आपसे नहीं कहता, शोहर करता है तो बीवी नहीं कहती, दोस्त नहीं कहते, पड़ोसी नहीं कहते, बहनें नहीं कहती, आप हलकान हो गई, आप ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई, आप अल्लाह ना करे, यानी बाजू का ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा खपरे होते हैं जल्दी ही जवानी में उनको बीमारियां लग जाती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, क्योंकि वो हर वक्त अपने ऊपर लेते रहते हैं ना। तो एक तो ये है कि अपने रवैये को बैलेंस करें, आप जो कुछ कर सकती हैं वो करें, अल्लाह से बातें करें, और अपनी जो दूसरों की जो रवैये हैं उनके शिकवे और शिकायतें करना छोड़ दे, कुछ उसका हासिल नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी खून ही बदलेंगे, दूसरे लोग तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप अपने आप को बदल सकती हैं ना। तो आप जो कुछ कर सकती हैं, जाहिर शादी हो चुकी है और जो शौहर है अब उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह शौहर है तो उसको अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो कुड़ने से रोने धोने से हालात तो नहीं बदलेंगे किसी के भी। वो एक कल औरत कह रही थी और आज भी किसी से बात हो रही थी कि शौहर बहुत ही जो है वो सुस्त है और जो मर्दों के काम है वो अदा नहीं करते, बिल नहीं देते, और नतीजा क्या निकलता है कि मैंने सोचा कि मैं भी क्यों दूं, क्योंकि मैं सारे काम करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, अब उसके साथ मैं बिल भी दूं, तो कह रही है कि दो दो तीन तीन महीने बिल नहीं गए, और उसके बाद खप सत कर फिर दोबारा मैंने बिल देने शुरू कर दिए, और कहती है कि कोई मेहमान आ जाए तो बाहर निकलते नहीं है कमरे से, मिलना नहीं चाहते मर्दों से भी, और अब मैं यानी क्या करूं, कहां कहां जाऊं, कितना करूं, कैसे करूं। तो बाज औकात ऐसा होता है कि बाज घरों में बाज मर्दों में ये कमजोरी पाई जाती है, तो आप अब वो 20 30 40 साल का मर्द हो चुका है, तो अब आप उसकी बेसिक चीज के अंदर तो आप चेंज नहीं कर सकती, हाँ आप उसको थोड़ा जो है वो बेहतर कर सकती हैं, मशवरे दे सकती हैं, थोड़ा उसके किरदार को उभार सकती हैं, हो सकता है घर में उसकी माँ ने उसे कभी इस तरह का कोई काम ही नहीं लिया था, माँ ने उसको जिम्मेदार बनाया ही नहीं था, तो हाँ अपने बेटे को अब बेहतरीन उसकी तरबियत करनी है, और उसके साथ फिर आपका रोना खपना आपको क्या करेगा, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज कर देगा, आपको शुगर का मरीज कर देगा, जो कर सकती हैं करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, खाम खा रोना धोना परेशान होना वो अपनी आदत जो है वो मत बनाए, और आप जो कुछ भी कर रही हैं आउट ऑफ द वे कर रही हैं, जरा बराबर यानी खजूर की गुठली के अंदर जो बारीक सा धागा है, यानी इतनी मामूली मकदार में भी आप पर जुल्म नहीं होगा, अल्लाह आपकी नेकियों की, आपके सबर की, आपके शुक्र की, आपके हुस्ने अमल की कदरदानी करने वाला है, तो अल्लाह से लॉ लगाएं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह को अपना वकील बनाएं, अल्लाह की बंदगी करें, फाउलाइका यकराउना, बस ये हैं वो लोग जो कि पढ़ेंगे किताबों अपने अमालनामे को, बड़े वो खुश होंगे अपने अमालनामे को खुशी खुशी पढ़ेंगे, वला युज़लमूना फतीला, और उन पर जरा बराबर जुल्म ना होगा, मन कान फी हाज़िही आमा, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, आयन मीम या जो है आंखों में किसी के अंधापन हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आयन मीम हा दिल के अंधे के लिए आता है, और हमजा काफ मीम हा वादरदात अंधे को कहते हैं, तो यहाँ पे आंखों के अंधे की बात हो रही है, वमन कान फी हाजे ही आमा, हाजे ही की जमीर दुनिया के लिए आई है, जो इस दुनिया की जिंदगी में अंधा बनकर रहा, इसके मानी क्या है, उसने जो है उसकी आंखें थी तो दुनिया की सारी चीजें उन आंखों से देखता था, नहीं देखता था तो अल्लाह की किताब को नहीं देखता था, उसके कान थे कानों से सब कुछ सुनता था, नहीं सुनता था तो हदायत की बात नहीं सुनता था, उसका दिमाग था अपने दिमाग से सारा इस्तेमाल करता था दुनिया के फायदे नहीं करता था तो आखिरत के लिए नहीं करता था, वमन कान फी हाज़िही आमा, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, फहुवा फिल आखिरति आमा, वो आखिरत में भी अंधा ही बनकर उठेगा, वो आखिरत में अंधा ही रहेगा, वह अदल्लु सबीला, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम, अदल्लु आ गया ना, तो ये क्या है, ये इसम तफदील है, तो वो जो है वो रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा जो है वो नाकाम रहेगा, तो ये कौन है, ये आयत नंबर 72 में असाबु शिमाल का जिक्र किया जा रहा है, असाबु शिमाल असाबुल यमीन के बाद असाबु शिमाल का जिक्र है, और असाबु शिमाल का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, ये दूसरा किरदार है, ये दूसरा ग्रोह है, तो ये वो लोग हैं कि दुनिया की जिंदगी में सिराते मुस्तकीम से हटे रहे, अपनी मर्जी करते रहे, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे, और ये आमा जो है बाज लोग कहते हैं कि दिल की बसीरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दिल का अंधापन यानी दिल की बसीरत का ना होना, जो दुनिया में हक के देखने समझने और कबूल करने से महरूम रहे तो वो आखिरत में भी अंधे ही जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हदायत इख्तियार करने की बजाय उसके रास्ते को देखने की बजाय अंधा बनना उसको پسند کیا تو اب یہ وہ لوگ ہیں بدقسمت کہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے. پھر یہ آیت نمبر 73, اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ مخالف یہ چاہتے ہیں کہ فتنوں اور آزمائشوں میں آپ کو مبتلا کر کے آپ کو آپ کی دعوت اور موقف سے ہٹا دیں. تو کفار کی جو دعوت ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرنا. کفار مکہ آپ سے سمجھوتے کی کوششیں کرتے تھے, کمپرومائز کرنا چاہتے تھے, تو کہا کہ ان کی بات نہیں سننی. وَإِن قَادُوا فرمایا اور بے شک قریب تھے, اور بے شک قریب تھے لَيَفْتِنُونَكَ کہ وہ تمہیں بہکا دیں, کہ وہ تمہیں امتحان کے اندر ڈال دیں. تو یہاں پر جو ہے یہ فتن اس کا روٹ ہے فا تا نون فتن, اور اس کے معنی ہے تپانا, سونے کو بھٹی میں تپا کر گلا کر پھر اس کے اندر جو کھوٹ ہے اس کو الگ کرنا. اور یہ جو فتن ہے یہ امتحان کا سب سے جو ہے یہ مشکل درجہ ہے, آخری درجہ ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور قریب تھا کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے, انلذی اس چیز کے بارے میں اوحینا الیکا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو پھیرنا چاہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, تو چاہتے تھے کہ تھوڑی بات جو ہے ان کی مانی جائے اور کچھ جو ہے وہ رسول اللہ کی مانی جائے. تو کہا کہ جب یہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, یہ تفتریا علینا غیرہ, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ گھڑ لو. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل مکہ کے آخری دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے, اور مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تو اہل مکہ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت سے ہٹانے کی پوری کوشش کی. اور یہ لتفتریا اس کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں, جھوٹ باندھنا, جھوٹ بنا لانا, تاکہ تم جو ہے وہ جھوٹ بنا لاؤ علینا ہم پر غیرہ اس وحی کے علاوہ. تو اہل مکہ نے جو ہے یہ چاہا کہ جو ان کا وہ شرک کرتے تھے, جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے, جو ان کی جاہلیت کی رسمیں تھیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بات نہ کریں, تو آپ کو فریب دیا, دھوکا دیا, لالچ دیا, دھمکیاں دیں, جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا, ظلم و ستم بھی کیا, شیب ابی طالب میں بھی آپ کو جو ہے وہ مبتلا کیا, اور یعنی جس میں معاشی دباؤ بھی تھا, معاشرتی مقاطعہ بھی تھا, سارا کچھ کیا, اور وہ سب کچھ کیا جو کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے. لتفتریا علینا غیرہ, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دو. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, وَإِذَن اور اگر آپ ایسا کر لیتے, وَإِذَن تو اس وقت جو ہے لتا خزوکا جو ہے البتہ بنا لیتے تمہیں وہ دوست, اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ چاہتے تھے ایسا کر لیتے تو اہل مکہ جو تھے وہ آپ کو جو ہے وہ ضرور اپنا دوست بناتے. خلیل جگری دوست, گہرا دوست, جس کی محبت دل کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جائے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی تمہارے اندر استقامت ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ کی توفیق سے تمہیں نصیب ہوئی ہے. اور ورنہ پھر کیا تھا کہ اہل مکہ نے وہ کوشش کی کہ آپ ضرور تھوڑا بہت ان کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے اور وہ خوشی سے آپ کو دوست بناتے, اور اگر آپ ایسا کر لیتے پھر کیا ہوتا, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اور اگر ہم تمہیں جو ہے وہ ثابت قدم نہ رکھتے. فقد کتا، تو البتہ قریب تھا کہ تو ترکنو، ترکنو تم جھکنے لگتے، کہ تم جو ہے وہ جھکنے لگتے، الیہم ان کی طرف، شیئن کچھ بھی، قلیلہ تھوڑا، تو اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ جھکنے لگتے. ویسے تو رکن جو ہے یہ پلر کو کہتے ہیں، مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھاما، اور آپ جو ہے آپ کو استقامت عطا کی، ورنہ کیا تھا کہ اس نازک مرحلے میں جو ہے وہ آپ ان کی باتوں میں آتے اور ان کی طرف جھک جاتے، کچھ نہ کچھ، شیئن قلیلہ تھوڑا سا. اور اگر آپ ایسا کرتے اذن اس وقت لَأَذَقْنَاكَ، تو ہم آپ کو جو ہے وہ چکھاتے، ہم ضرور آپ کو چکھاتے. ذوق سے ہے نا چکھانا، ذائقہ بھی اسی سے ہوتا ہے، دیف الحیاتی و دیف الممات، تو ہم آپ کو جو ہے وہ، دیفا کا لفظ جو ہے دعاد انفا جو ہے یہ دگنے کے لیے، دوہرے کے لیے، دونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ چکھاتے، دگنا عذاب دنیا کی زندگی میں اور دگنا جو ہے وہ موت کے بعد، ممات موت سے ہے. ثم لا تجدو لک علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. تو یہ ساری رداد سنانے کے بعد اللہ تعالی تبصرہ کر رہے ہیں، اور پہلی بات کیا کہی کہ اگر تم باطل سے سمجھوتا کرتے تمہاری بگڑی بھی قوم تو ضرور خوش ہو جاتی، لیکن اللہ کا عذاب تم پر بھٹک اٹھتا، اللہ کا عذاب تم پر بھڑک اٹھتا دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان خواہ پیغمبری کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی مدد اور توفیق جو ہے وہ شامل حال نہ ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ انسان بڑا ہی کمزور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صبر و ثبات کے ساتھ کفر کے مقابلے میں ڈٹے رہے، جمے رہے، اور کوئی آپ کو بال برابر بھی جو ہے وہ آپ کے موقف سے ہٹا نہ سکا، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کی عنایت تھی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنے عملوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور مشکلات میں اللہ ہی ہے جو کہ بندے کو مشکلات سے جو ہے وہ نکالتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، کرسی کی خاطر، دولت کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ وہ حق اور باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں تھا، لیکن آپ کے توسط سے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کو بھی، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کفر اور حق جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جو شخص بھی جو ہے وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور پھر آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو انتظار کر ہی رہی ہے. وَإِن كَادُوا، اب یہاں پر جو ہے وہ مزید بتایا جا رہا ہے، اور بے شک قریب ہے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ تمہیں جو ہے وہ پھسلا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں قریب ہے کہ پھسلا دے. یہ لفظ آپ نے آیت نمبر 64 میں بھی پڑھا ہے، شیطان کے لیے وہاں کے وَسْتَفْزِزْ، کہ وہ پھسلا دے. تو اس کے معنی کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ فا زا زا، اور اس کے معنی ہے کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہا لے جانا، اس کے قدم پھسلا دینا، کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر کے نکال دینا. اور قریب تھا کہ وہ آپ کو ہلکا پا کر آپ کو جو ہے آپ کے قدم جو تھے ان کو اکھاڑ دیتے، من الارضی، زمین سے، تو تمہارے قدم اس سرزمین سے وہ اکھاڑ دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. وَإِذَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. تو اب یہاں پر جو ہے ये बात बताई जा रही है कि ये लोग क्या करना चाहते थे, कि तुम्हें मक्का से निकालना चाहते थे, और कुफारे मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। और आप देखें कि आपने हिजरत की, और फिर चश्मे फलक ने ये नजारा भी देखा कि आप मक्का में फातह की हैसियत से दाखिल हुए, है ना। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अगर ये ऐसा करेंगे, यानी अगर आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर देंगे, खुद भी ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, और आप देख लें कि फिर इस्लाम गालिब आ गया, तो तुम्हारे बाद ये खुद भी कुछ ज्यादा देर यहाँ पे ना ठहर सकेंगे। सुन्नता मन कद अरसलना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये हमारा जो है वो मुस्तकिल तरीका है। मन कद अरसलना के जो भेजे हमने कबला का पहले आपसे, मिन रोसुलिना अपने पैगम्बरों में से, मिन रोसुलिना अपने रसूलों में से, फला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और नहीं पाओगे तुम हमारी सुन्नत में कोई भी तगैयुर, तुम हमारी सुन्नत में कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि ये मेरा तरीका चलाया है पुराने जमाने से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले पैगंबर गुजरे उस जमाने में भी अल्लाह की ये सुन्नत रही कि जब किसी कौम ने अपने रसूल को अपने वतन से निकाल दिया, उसको हिजरत पर मजबूर कर दिया, वतन से निकाल दिया, तो फिर वो कौमें जो है वो अल्लाह के अजाब से बच ना सके। और आप देख लें कि अहले मक्का जो थे, गज़वे बदर देखें, उहद देखें, और मुख्तलिफ जंगे देखें, और यहां तक कि फिर इस्लाम जो है वो फतह हो गया। इससे ये बात पता चलती है कि जब तक किसी नाफरमान कौम में अल्लाह का नबी मौजूद रहता है, उस वक्त तक उस पर अजाब नहीं आता, और जब वहां पे अजाब आना मुकद्दर होता है, अल्लाह अपने रसूल को वहां से निकाल लेता है या उसको हिजरत करने का हुक्म दे देता है। जब नबी चला जाता है तो उस कौम के लिए दो ही शक्लें बाकी रहती हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला बराहे रास्त उस कौम पर अपना अजाब नाजिल करके उसको तबाह कर दे, और दूसरा ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के हाथों उस सरकश कौम को पिटवा दे। तो जिन मुजरिमों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर किया था, ये हो सकता था कि फिर अल्लाह उनकी बजाय किसी दूसरी कौम से उनको सजा दिलवा दे, लेकिन उनको सजा किससे मिली, मुसलमानों से सजा मिल गई। तो ये है अल्लाह की सुन्नत, सुन्नता मन कद अरसलना कबला का मिन रुसुलिना, ये हमारा मुस्तकिल तरीकेकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है। वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और तुम हमारे तरीकेकार में कोई भी तब्दीली जो है ये ना पाओगे। तो तहवीला जो है, हा वोला इसका रूट है, इसके माने है मुतगैयर होना, तब्दील होना, रद्दो बदल। तो असल माने है किसी चीज का जो है वो तब्दील हो जाना। तो ये था हमारा सबक, और आप देखें कि इस सबक में ये जो आयत नंबर 61 से 77 तक आपने पढ़ा, हमारे सामने क्या बात आती है कि शैतान जो है उसके बहकावों में नहीं आना। शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, उसकी चालें, उसके हरबे बड़े शदीद हैं, बड़े सख्त हैं, और वो सिराते मुस्तकीम से हटाना चाहता है, और ये उसका चैलेंज भी है ना। उसने कयामत तक मोहलत मांगी हुई है, तो हमें जो है वो इस बात को नहीं भूलना चाहिए, और हमें जो है वो शैतान के जो सब्ज बाग हैं और जो झूठे वादे हैं, उनसे अपने आप को बचा कर आखिरत की तैयारी करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है। पर जिंदगी बहुत थोड़ी है, वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, और इसका एहसास नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि जो है वो एक लकड़ी का तख्ता है और पानी पर तैर रहा है, और वो किसी वक्त भी तख्ते पर शख्स जो लेटा हुआ है वो डूब सकता है पानी में, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो हाथ जो है वो सर के नीचे देकर जो है वो सो रहा है। उसको कोई एहसास नहीं है कि मेरी जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, और मैं कुछ करूं, मैं अपने आप को किसी तरह डूबने से बचाऊं। तो क्या करना है, होमवर्क करना है, वक्त को जाया होने से बचाना है, शैतान के हरबों से जो है वो अपने आप को महफूज करना है, और अल्लाह ताला ने जो हमें अशरफ अल मखलूकात में से पैदा किया इसका ख्याल रखते हुए फिर हमें अल्लाह की बंदगी करनी है। कुफ्र, शिर्क, न शुक्री, ना फरमानी, इससे अपने आप को बचा कर فکر کرنی ہے کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں، میں کیا کر رہی ہوں، میں مجھے کس طرف لے جایا جائے گا، کیا بنے گی مجھ پر. اور ہم ہی جیسے انسان تھے جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی، اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کیا اور صبر اور شکر کر کے وہ جنت کے مسافر بن گئے. تو جب گول اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بہترین ہے، تو اس کے لیے قربانیاں بھی کرنی پڑیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، ہمیں بہترین مسلمان بنائے. اور یہاں پہ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا دو آزمائشوں کا ذکر ہے، ایک ہے سمندر کی کشتی کے کہچ کولے اور ڈگمگانا، تو یہ دنیا کی زندگی کی مصیبتیں اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا ہے نعمتوں کی بارش، کہ جب وہ جو ہے وہ کشتی ڈگمگانے سے رک جاتی ہے اور آرام سے چل رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ شکر کی آزمائش زیادہ سخت ہے یا صبر کی؟ شکر کی آزمائش زیادہ سخت ہے، کیونکہ مصیبت میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں نا. لیکن سلف صالحین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مصیبت میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، لیکن نعمتوں سے جب ہم آزمائے گئے تو ہم شکر نہ کر سکے. پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں کیا پڑھا، وکان الانسان کفورا، تو مجھے کفورا نہیں بننا، یہ کردار میرے اندر نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو شکورا بننا ہے، شکورا کا کردار میرے اندر آنا چاہیے، شکر گزار بندے اور بندگی کرنے والے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.